राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 जुलाई 1992 प्रातः लगभग 8:30 बजे मथानिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
प्रश्न आया है कि सहज समाधि का क्या अभिप्राय है। सहज समाधि से अभिप्राय सहज समाधि का है। सहज समाधि स्वतः सिद्ध उसका नाम सहज समाधि। सहज ज्ञान दो होते हैं, एक तो सहज मानव स्वाभाविक, एक सहज जाए के साथ ही पैदा हो सहज। तो स्वाभाविक समाधि है वो, और साथ ही पैदा हुई है सबके साथ में। कहते हैं राजस्थान में किन किन संतों को सहज समाधि प्राप्त की है, किन किन संतों ने, इसका हमें पता नहीं। हमें बिल्कुल पता नहीं, हम जानते नहीं किन किन संतों ने सहज समाधि प्राप्त की, हमारा पता नहीं। हमें क्या पता है, दूसरे की बात दूसरे को पता नहीं लगता। हम अपनी भावना कर सकते हैं ऐसी कि भाई अंत महात्मा है, ये संत है, वो संत कैसे है, किस तक कहाँ तक है, इसकी संभावना नहीं। पढ़ना चाहे वो पढ़े लिखे की परीक्षा कर रहे कि कहाँ तक पढ़े, ये शक्ति नहीं। ये कह सकता है कि मैं इनसे पढ़ सकता हूँ, मेरे को ये पढ़ा सकते हैं, इतना ही ज्ञान होता है। अगर ये कहाँ तक पढ़े वो ही ज्ञान नहीं होता, स्वयं पढ़े क्या करूँगा। ऐसे दूसरे संत सहज समाधि वाले कौन कौन हुए हैं इसका कुछ पता नहीं। भावना कोई किसी में रखता है, कोई किसी में रखता है, कोई किसी में रखता है, वो अपनी अपनी भावना है। मेरे संत से पहचान सकते नहीं। महाभारत में प्रसंग आता है, सुनभा एक भिक्षु की आई है महाराज जनक के पास। जनक महाराज के पास में सुनभा नाम की एक भिक्षु की आई है, तो उनका संवाद हुआ। उस संवाद से राजा जनक को अज्ञानी सिद्ध कर दिया सुनभा ने। जनक महाराज ने अज्ञानी सिद्ध कर दिया सुनभा को। सुनभा बड़ी योगिनी थी, बड़ी विलक्षण योग शक्ति वाली थी वो। तो उसने जनक के भीतर प्रवेश किया, यहां बैठी है और भीतर प्रवेश कर गई जनक के भीतर, वहां अंतकरण में वो आ गई। तो महाराज जनक ने कहा तुमने गलती की, ये तुम्हें आश्रम विरुद्ध है, वर्ण विरुद्ध है, कई बातें उसकी। आश्रम में गृहस्थ आश्रम, तू साधु आश्रम है, मैं वर्ण क्षत्रिय, तू ब्राह्मणी, वर्ण आश्रम आश्रम और शरीर से आश्रम, इससे तुमने ये व्यभिचार दोष किया है, बहुत पाप किया तुमने जो हमारे में प्रवेश किया। तो भिक्षु की बोली कि हम तो जनक को विदेह सुना है, किसमें देह का अभिमानी नहीं है, जिसमें कोई मन नहीं होता वह भिक्षु रहते हैं, इसमें क्या बात हुई। अभी तो देखा कि तुम्हें मालिक पड़े हो, बैठे हो उसमें, इस सही के मालिक बैठे हो, हम सब वैसे ही कोई परवाह नहीं। उसने कर दिया। फिर पता नहीं लगता हरे को क्या पता लगे। भिक्षु कहा रहते महाराज जहाँ घर खाली हो, तो हमने समझा जनक ज्ञानी है तत्व के घर खाली है तो हम आ गए वहां। हर जगह तो मालिक बड़ा बैठा है, तत्व ज्ञान नहीं है, इस हाल पता नहीं लगता। अब क्या गृहस्थ क्या गृहस्थ भी सहज समाधि प्राप्त कर सकता है? तो कैसे गृहस्थ भी सहज समाधि प्राप्त कर सकता है? सहज समाधि तत्व ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का प्रेम, मुक्ति किसी वर्ण और आश्रम के अधीन नहीं है, किसी वर्ण के अधीन नहीं है, किसी आश्रम के अधीन नहीं है। पुस्तकों में वर्ण आता है, उसमें वर्ण आश्रम की बात भी लिखी है, वो भी आती है, परंतु गीता के अनुसार सबका अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण, चारों आश्रम, इसके सिवाय मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में सबका अधिकार है। कारण उसका क्या है कि सबके सब परमात्मा के अंश हैं। हम अलग अलग हैं तो वर्णाश्रम को लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के अलग अलग हैं। तत्व से परमात्मा के अंश सब है। कीड़ी मकोड़ी, बिच्छू, सांप, वृक्ष, पशु और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सांप, गोहिरा, बिच्छू सब परमात्मा के अंश है। तो इसको प्राप्त करने का अवसर मनुष्य मात्र को है। तो मनुष्य में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई क्या हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य मात्र का अधिकार है। ये भगवद गीता की ऐसी विलक्षण उदारता है। पापी से पापी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पापी से पापी भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है, थोड़े से थोड़े समय में तत्व को प्राप्त कर सकता है, अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, अपढ़ से अपढ़, कालाक्षर भैंस है जिसका, ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसे गीता में आया है। गीता ऐसा कहती है। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति को कोई अयोग्य नहीं है, सब किसे भय। जो वास्तव में नहीं चाहता है वही अयोग्य है, वो चाहता ही नहीं तो उसे योग्य योग्य क्या, वो चाहते ही नहीं। अगर सत्य उसकी अभिलाषा हो तो सबको प्राप्ति हो सकती है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बुढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, सब परमात्मा तत्व को सब प्राप्त कर सकते हैं। गीता के सिद्धांत के अनुसार ये बात मैं कहता हूं। ये विलक्षण बात है, हर एक जगह नहीं मिलती। मेरे को संतों से, महात्माओं से मिली है, वो बात कहता हूं। पुस्तकों में हर एक जगह नहीं मिलती है, अलग अलग मिलती है, अलग अलग बातें मिलती है। पर अच्छे अच्छे संत है, महात्मा है, उनके संकेत से, उनके संग से, उनकी बातों से ये बातें हमें मिली है और गीता से हमारी सिद्ध हो जाती है। ये बात इस बार सबको प्राप्त हो रही थी। अब कहते सहज क्या है वो? तो उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा सातचिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था सबसे उत्तम है। सहज साधु भाई, सहज समाधि भरी, कबीर जी महाराज ने कहा है, वो सहज समाधि स्वाभाविक। गीता ने समाधि को सहज तो ऐसा शब्द याद नहीं है, पर गीता ने कर्मों को भी सहज बताया। ब्राह्मण का कर्म सहज है, क्षत्रिय का कर्म सहज है, वैश्य का कर्म सहज है, शूद्र का कर्म सहज है, स्त्रियों का कर्म सहज है, पुरुषों का कर्म सहज है, सहजन कर्म कौन थे सदोष मन सहज। मानो सात पैदा हुआ, ऐसा स्वाभाविक उनका है। उस स्वाभाविक मर्यादा को अगर न छोड़े, ठीक सहज मर्यादा में चले, तो सबके सब परमात्मा की प्राप्ति वाले जीवन मुक्त हो सकते हैं। ऐसी विलक्षण बात हमें मिली है, बहुत अलौकिक विचित्र बात। आप माने न माने, जाने न जाने, उपासी अलग है, पर मेरे को बहुत विलक्षण बातें संत महात्माओं से मिली है, पुस्तकों से मिली है, शास्त्रों से मिली है, और वो मिली है फिर गीता से सहमत हो गई, गीता में प्रमाण आ गया। इस वास्ते हमें इस बात में संदेह नहीं है, भगवान के भरोसे पर, भगवान के वचनों पर। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं, पर ये बात ऐसी है, गीता कहती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के वर्ण बताए हैं, आश्रमों का इतना वर्ण नहीं है गीता में, परंतु अभी से दुराचार है, दुराचारी से दुराचारी, ये भी शिव पाप यो नहीं, अभी चेत पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, अति से अधिक पापी और दुराचारी और नीच योनि परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा गीता में खुला गया है। और थोड़े से थोड़े अंत काल ये माम थोड़े थोड़े, और मूल से मूल बुद्धि योगम तम ये मापी थे, मैं वो अज्ञान तम तमाम ना से हमें आदम भाव ज्ञान दीपे, उस ज्ञान दीप से मैं उसका अज्ञान दूर कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने दसवें अध्याय में कहा। इस वास्ते सबको प्राप्त हो सकती है। अब कैसे प्राप्त हो जाए, तो कैसे के प्रकार को मैं नहीं जानता हूँ पूरा। एक बात जो मेरे को मालूम होती है शास्त्रों से संतों से, सच्ची लगन हो जाए, उस सहज सहजावस्था प्राप्त की, सहज समाधि प्राप्ति की सच्ची लगन हो जाए भीतर, जिसमें ना भूख लगे, ना नींद आवे, ना चैन पड़े, रहा ना जाए, वो लगन सच्ची, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, ना जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है, ना ठीक की इच्छा है, ना बेठीक की है, ना प्रतिकूलता की है, ना अनुकूलता की है, ना निरोगता की है, ना रोगता की है, ना स्वास्थ्य की है, कुछ कोई इच्छा नहीं मन में, इच्छा ना कुछ है ही नहीं, ना मान की है, ना बढ़ाई की है, ना आदर की है, ना जीने की है, एक उस सहज अवस्था की प्राप्ति की है, अनन्य भाव से मिल जाएगी। किसने मिल जाएगी इसके तो राम भगवान जाने, गीता कहते मिल जाएगी। जय कर रामायण भी कहते जय कर जय पर सत्य संदेह सोते मिलता न कसु संदेह संदेह नहीं, रामायण भी यही कहते, गीता भी यही कहती। तो असली लालसा नारायण हरि भजन में, हरि लगन में, नारायण हरि लगन में, यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, ये सुहात ही नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, ये सुहात ही नहीं, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, चैन नहीं पड़ती, कोई चीज आदर सत्कार सुहाता नहीं, कहीं भी मन लगता नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे हो, ये सहजावलता कैसे प्राप्त हो, ऐसी लगन लग जाएगी उसको हो जाएगी। करके देख लो मेरी बात झूठती किसी हो तो ऐसी लगन लगाओ, एक लगन के लिए भी भगवान से कहो, अपनी तरफ से नाम जप करो और हे नाथ भूलू नहीं ये कहते रहो, नाम जप करते रहो मन से, हे नाथ भूलू नहीं कहते रहो और कहते हो, हे नाथ वो सहजावस्था कैसे प्राप्त हो, हे भगवान वो सहज समाधि कैसे प्राप्त हो, हे हे भगवान कैसे प्राप्त हो, ऐसी लगन लगे रात दिन नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, जहाँ कोई बात मालूम होती हो वहां सुनो और उसके अनुसार जीवन बनाओ, लगन नम रात दिन लग जाओ इसमें, करके देख लो, अरे इससे नुकसान होगा नहीं, इतनी बात और कह देता हूं मैं, ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ, नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा, जितनी तेजी की आपकी लगन होगा उतना तेजी का लाभ होगा, और जितना होगा उतना ठीक है। मारवाड़ी क्या होते गाले जुते मीठो नावे जुते पुण्य, ये बात है, मिठू की तो हरी जुती मिठू सी ज्यादा कैसा होती ऐसे नवी जुती पूर्ण होती। आप जितनी लगन लगाओ उसे फायदा होगा, थोड़ी हो थोड़ी से फायदा होगा, ज्यादा ज्यादा से फायदा होगा, पूरी हो तो पूरा फायदा होगा, लगन के अनुसार है। मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें मिलती है, कल परसों तरसों एक बात विशेषता से धमकी, क्या वास्तव में अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहते, जीवन में एक बात पर दृढ़ रहते कहीं भी तो वो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। ना जबान की मर्यादा है, ना विचार की मर्यादा ना है, ना संकल्प की मर्यादा है, कुछ भी किसी मर्यादा पर नहीं चलते, उसकी बड़ी मुश्किल है। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संसार, कुछ ज्ञान, घर का रहन घाट का जो धोबी का समान, धोबी अपने पैर पर अथवा गले पर कपड़े लाद कर घाट पर चला तो कुत्ता साथ में हो गया, अब घर से तो निकल गया और गलियों में लड़ाई छिड़ गई, वो धोबी तो पहुंच गया घाट पर, अब कुत्ता घर का रहन घाट का, मतलब घाट पहुंचा नहीं घर का रहा नहीं। ऐसे कुछ सत्कार, कुछ दुष्टचार, कुछ संसार, कुछ ज्ञान, घर के रहने घाट के जीव धाबी के स्वान, कोई एक बात पर निर्णय नहीं, एक पर दृढ़ निश्चय नहीं, एक सिद्धांत पर रही, उनकी दशा तो यही होगी। मना बीकाने में कहते हैं कि आ रहता रहा तो यही संसार का है, ऐसी दशा तो यही है जो हो रही है। एक लगन केवल हो, गजेंद्र ने कहा है, गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है, वह विशेष रूप का ध्यान नहीं किया, चतुर्भुज है, दो भुज है, सहस्र भुज है, सकुण है, निर्गुण है, साकार नाकार निराकार, यह कष्ट ने सो बलिगात भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम, उसके मैं शरण हूँ जो सर्वोपरि है। ऐसा जो कोई है वो कोई ऐसा ही है, सगुण है, निर्गुण है, साकार, झगड़े में मत पड़ो, ये कोई पदार्थ है, केवल यही बात, रक्षा होगी सब कुछ हो गया, मैं कहा झगड़े में पड़ो तो बस करते रहो, बोले कोई द्वेष है, कोई अद्वैत है, कोई विशिष्ट अद्वेष है, मैंने पुस्तक पढ़ा अद्वैत अद्वैत कल्पना है, कुछ नहीं आपस है, कोई कोरी आपस निकालो शुद्ध सत्य हृदय से परमात्मा लग जाओगे सब ठीक हो जाएगा। नारायण 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 नारायण, और जो भाई गीता चलती है वो बात कुछ कह रहे हो, भगवत गीता के 12वां अध्याय से लेकर हमारा प्रसंग चला, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां हुआ, अब 18वां अध्याय है। जिनको गीता याद है, जो गीता समझना चाहते हैं, वे भाई बहन पर ध्यान दें मेरी बातों पर, बैठे बैठे विचार करते हैं, मनन कर रहे हैं, फिर इसका दिन में मनन करें। तो शंकर जाए पूछे 18वें अध्याय के 78 श्लोक है, 78 श्लोक। अथर का आधा कितना होता है, 39, ठीक है ना, 18वें अध्याय का आधा होता 39। 39 तक जो प्रकरण है वो ऐसी विचित्र बात है, इसमें आप सुनो तो एकदम सुनते ही समझ लोगे, विचार को सुनते ही याद हो जाएगी एकदम। 3-3 श्लोक है, 13-3 39 13 बातें है, 3-3 श्लोकों का बोल क्या देर लगे, एक एक बात 3-3 श्लोकों की, 13-3 39 13 बातें है, और 40 में उपसंहार है। पहले श्लोक में प्रश्न है और 2 श्लोकों में दूसरों के मत का वर्णन है, 3 श्लोक है, 3 श्लोक हो गया, और 3 से 4 तक त्याग के विषय में भगवान के मेरा निश्चय सुने, को भगवान निश्चितम मतमोत्तम छठे तीन श्लोकों में भगवान ने त्याग का मत बताया। त्याग का मत बता करके फिर भगवान ने कहा एक सात्विक एक तामस होता है, राजस होता है, एक सात्विक होता है, तीन तरह का होता है। तीन श्लोक ये आ गए, कितने हो गए? और तीन त्यागी का वर्णन है, तीन श्लोकों में त्यागी का वर्णन है, 9, 10, 11, 12 क्यों
जी।
और इसके बाद में पांच हेतु है, कर्म मात्र के पांच हेतु अधिष्ठान करता है, तीन श्लोक में है 13, 14, 15 इसमें कहां पांच हेतु का उसका वर्णन है। 16, 17, 18 इन तीनों में आत्मा कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, इसका वर्णन है। अब 19 में भगवान बताते हैं ज्ञान कर्म और कर्ता तीन भेद है। ये 19वें श्लोक में कहा ज्ञानं कर्म से कर्ता तिथि में गुण भेद है प्रोचित गुण संख्या में ऐसा समझिए। 19वां एक श्लोक टाल कर एक ले जाना ये। फिर 20, 21, 22 में ज्ञान का वर्णन है और 23, 24, 25 में कर्म का वर्णन है, 26, 27, 28 में कर्ता का वर्णन है। फिर बुद्धि और धृति का एक श्लोक है 29वां, 19वां, 29वां और 36वां ये तीन श्लोक है प्रतिज्ञा वचन तीन श्लोकों में। तो तीन श्लोकों में कर्ता का वर्णन हो गया और तीन श्लोकों को कह 29वें में 30, 31, 32 बुद्धि का वर्णन है, 32, 33, 34 में धृति का, तीनों में अच्छा तीन के बाद धृति के बाद में प्रतिज्ञा वचन आ जाते हैं 1, 19, 29, 31 फिर इनके बाद में तीन प्रकार के सुखों का वर्णन है। 39 हो गया और 40 लोग उपसंहार है। संसार में जितने जो कुछ है सब तीनों गुणों के सहित है, तीनों गुणों के प्रकार है, प्रकृति तीनों गुणों से रहित ना स्वर्ग में ना देवलोक में देवताओं में मनुष्यों में कोई भी इनसे रहित नहीं है। ये 40 मत दिया आदर्श आचार्य और आगे 41 से 48 तक वर्ण धर्म बताया। वर्ण धर्म अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र इनके कर्म बताए, स्वाभाविक कर्म बताए, इनको सहज कर्म बताए और इनसे इन कर्मों के अनुसार अधिष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति होता है ये बताया। 48 हो गए। 49 से 55 तक 7 श्लोक इन 7 श्लोकों में ज्ञान की निष्ठा बताई, क्योंकि अर्जुन ने संन्यास से महाबाहो और ज्ञान से संन्यास की और त्याग से त्याग ज्ञान पूछा तो ज्ञान की 40 तक हो गया। अब त्याग का विषय आया तो वर्ण धर्म आया और उसके बाद फिर सांख्य आया तो 49 से 55 तक सांख्य का वर्णन किया। त्याग होता है कर्मयोग, सांख्य होता है ज्ञान योग, तो उसमें उपासना साथ में मिल जाए वो उपासना मिल जाए वो 41 से 48 तक की बात बताई और ज्ञान में उपासना मिल जाए वो 49 से 55 तक बताई। ये बता दी अर्जुन के अनुसार 56 से 66 तक 11 श्लोकों में भगवान ने भक्ति का वर्णन किया। इसमें ज्ञान और कर्म दो ही बात पूछी थी उनकी बात कह दी, भक्ति की समझ भगवान ने अपने आप से कही। ये 56 से 66 से 11 श्लोकों में उसका वर्णन है और 66 के बाद में गीता किसको कहनी चाहिए किसको नहीं कहनी चाहिए और गीता का क्या महत्व है और क्या क्या होगा परिणाम में ये बात कह दी। 78 श्लोक अपनी बात सब सीधी याद कर रही चुटकियों से याद हो जाए एकदम ठीक मान कर कोई भी कर लो, बच्चे याद कर रहे, बड़े कर रहे, बहना माता भाई सब कर सकते हैं श्री पुरुष। अब ये बात आ रही अब वो इसमें थोड़ा विवेचन कर रहे। पहले भगवान ने गीता में 2 निष्ठा करी है, 3rd अध्याय के 30th श्लोक में लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा। अर्जुन ने पूछा जाय सीते कर्मों से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, ये मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं। एक बात बात आई है जिससे मेरा कल्याण हो जाए, ये अर्जुन ने तीसरे अध्याय में पूछा। तो भगवान ने दो निष्ठा बताई, ज्ञान योगी ने संख्या नाम, कर्म योगी योगी नाम, दो निष्ठा है। वे दो निष्ठाएं बीच में वर्णन होता रहा, ये कर्मयोग की निष्ठा दूसरे अध्याय में बताई, कर्मयोग से सिद्धि पुरुष से सिद्ध प्रज्ञ के, तीसरे चौथे में कर्मयोग का विशेष बताया, कर्मयोग सांख्य दो पांचवें अध्याय में बताया, छठे अध्याय में ध्यान बताया, सात आठ नौ में भक्ति का उदय समय, ग्यारह तक भक्ति का विशेष वर्णन किया। ये अध्याय है। अब वो जो निष्ठा कही थी उस पर अर्जुन का प्रश्न है, कहते ये कैसे प्रश्न आया भाई, वहां तो गई तीसरे अध्याय में ध्यान से अठारहवा अध्याय, ये क्या समझ आया, उठ बना बात। तो वर्णन आया भगवान का, ये वर्णन हुआ नारायण 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 नारायण, भगवान ने भक्ति का वर्णन किया, ज्ञान का तेज तेज सौदे में वर्णन किया, पंद्रह में भक्ति का वर्णन किया, सोलह सत्रह में, सोलह में देवी संपत्ति आशु संपत्ति का, और सत्रह में जो शास्त्र विधि को त्याग कर करते हैं उनकी क्या निष्ठा होती है उसका वर्णन किया। तो ये वर्णन हुआ तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, यहाँ अर्जुन अब संपूर्ण गीता के सार को पूछते हैं, दो निष्ठाओं के विषय में पूछते हैं कि दो निष्ठाओं का अलग अलग ठीक तरह से बताओ, वहां से वर्णन होता है। तो ये अध्याय में वर्णन हो चुका है बहुत ही बातों का, उस बात को लेकर के एक बात और बता दें, अठारहवें अध्याय में सत्रह अध्याय में कही हुई बातें पूरी की पूरी बताई है, जिसमें जो संक्षेप से कही है उसका विस्तार से अठारह में कह दिया, और जो विस्तार से कही उसका संक्षेप में कह दिया। तो गीता भर का सिद्धांत भगवान ने अठारहवें अध्याय में कह दिया, गीता भर में क्या क्या चीज है कैसा है वो पूरा का पूरा अठारहवें अध्याय में कह दिया। तो इस बात से अर्जुन ने पूछ लिया, महाराज मैं संन्यास से तत्व संन्यास से महाबाहो तत्व इच्छा में भेजित हूँ, महाराज हे महाबाहो भगवान कृष्ण संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ, वो संन्यास क्या है, दो नेता के सांख्य योगा नाम और कर्म योगी नियोगी नाम, और त्याग से और त्याग की संन्यास से त्याग से तत्व इच्छा में भेजित हूँ, संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ, वो जानता हूँ पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, अलग अलग जानना चाहता हूँ, मानो कर्मयोग अलग ज्ञान योग अलग, ऐसे अलग अलग इनका तत्व मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे तीन संबोधन दिए संन्यासी से महाबाहो पृथक केसी निशोधन और ऋषि कैसे केसी निशोधन, तीन संबोधन दिए। तीन संबोधनों का मतलब महाभाव समर्थ सामर्थ्य है आप में, सब तरह की सामर्थ्य है, आप इन बातों को समझा सकते हो, तत्व का बोध करा सकते हो, और कैसी निशोधन है विघ्नों का नाश, राक्षसों का नाश करने वाले, ऋषिकेश अंतर्यामी अंत की बात पूरी करने वाले हो, विघ्नों का नाश करने वाले हो, और आप सर्व समर्थ हो, दोनों का तत्व ठीक ठीक समझाओ। ये
संबोधन का अर्थ हुआ, तात्पर्य क्यों दिए गए,
क्यों दिए गए कि आप समर्थ हो बताने में भी और रक्षा करने में भी समर्थ हो, और हृदय की बात जानते हो सब समर्थ हो, मैं समझता हूँ तत्व चाहता हूँ दोनों का, संन्यास का भी तत्व योग का भी तत्व, तो उसको जानने वाले भी आप हो, अग्नि के बीच में चले उनकी रक्षा करने वाले भी आप हो, और उनसे अंतकरण की बात भी जानने वाले समर्थ हो।
रक्षा किससे करनी थी,
विघ्नों से, कैसी निशोधन कैसी, तो घोड़ा था घोड़ा भी धारण रहा, तो राक्षसों का नाश करने वाले, तो साधकों के विघ्नों को दूर करना और साधक की रक्षा करना और उसको तत्व समझाना सामर्थ्य, इस वास्ते बताओ महाराज। तो भगवान कहते ठीक है बताएंगे भाई। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कई कवि लोग तो ऐसा कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, ये संन्यास। अब काम्य कर्म क्या है, थोड़ी सी बात ऊपर से बता दें। एक नित्य कर्म होता है, एक नैमित्त कर्म होता है, एक प्रायश्चित कर्म होता है, एक काम्य कर्म होता है। चार तरह के होते हैं, एक स्वाभाविक, पांच तरह के। नित्य कर्म क्या है, संध्या वंदन आदि करना, रोजाना का हर हमेशा का कर्म होता है, वो नित्य कर्म कहलाता है। नैमित्त कर्म पूर्णिमा है, आज अमावस्या, आज की एकादशी है, इसलिए ये काम करना है, आदर्श पूर्णमासी है, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, निमित्त को लेकर, वो निमित्त काल को लेकर निमित्त होता है। और संत महात्मा आ गए, आज तो भी ये काम करना है, वो भी निमित्त हो गया, अवसर आ गया, ऐसे मौका आ गया, तो समय आ गया, अवसर आ गया, संयोग मिल गया, परिस्थिति बन गई, ऐसे निमित्त को लेकर किए जाए वो कर्म निमित्त कर्म है, नित्य कर्म और निमित्त कर्म। और प्रायश्चित कर्म है भी, ये पाप हो जाए तो ऐसा प्रायश्चित करो, ये पाप हो जाए तो इसका ये प्रायश्चित करो, इसका प्रायश्चित कर्म वो प्रायश्चित कर्म होता है। और काम ये है कि हमारे यज्ञ करना है, कि शत्रु मर जाए इस वास्ते करना है, बेटा हो जाए इस वास्ते काम कर्म करना है, धन हो जाए इस वास्ते करना है, मान बढ़ाई हो जाए, हमें राज्य मिल जाए, ऐसे काम्य कर्म। वो काम्य कर्म कामना वाला, कामना दो तरह की, अनिष्ट की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, काम्य कर्म। तो कोई कहते हैं काम्य कर्मों का न करना का नाम संन्यास, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु। वे कहते काम्य कर्मों का त्याग कर देगा नाम संन्यास। और सर्व कर्म फल त्यागम प्रावस्था विचक्षणा, कई विचक्षण कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर देना, बस विचक्षण पुरुष ये कहते हैं। एक ही लाइन में चार चार मत है, दो श्लोक एक श्लोक पूछ है, दो श्लोक उत्तर है, तो एक एक श्लोक में एक एक मत है। सर्व कर्म फल का त्याग कर देना, इसको विचक्षण त्याग कहते हैं। और कई कहते हैं त्याजम दोष हो देते हैं कर्म प्रावर मनीषिणा, कई मनीषी कहते हैं कर्मों का दोष की तरह त्याग देना चाहिए, कर्म मात्र दोष युक्त है, अभी कहा है सर्वारंभाई दोष है घुमाने के बता, इसलिए त्याग तो करना चाहिए। इसमें दोष वत शब्द में दो अर्थ होते हैं, एक वती प्रति होता है, एक मतुप प्रति होता है, मतुप में दोष वत बनता है, वती में दोष वत बनता है। तो दोषों वाला त्याग कर देना मतुप काल से, और केंद्रीय क्रिया से वती करो तो दोषों की तरह जो दोष छोड़े जो कर्म छोड़ देना चाहिए, तो कर्म का त्याग कर देना चाहिए, ये बात भाई उनकी। और चौथे कहते हैं कि देखो भाई तुम त्याग ही त्याग पर चले हो, सो की बात है, यज्ञ दान तप ये छोड़ना मत, सभी छोड़ दोगे तो यज्ञ दान तप न त्याज्यम इसी चाह परे। वे कहते हैं ना ना यज्ञ दान तप का त्याग मत करना, ये तीन कर्म साफ है इसी चाह परे, ये उनका मत बता रहा। उनका मत बताकर भगवान अपना मत बताते हैं आप तीन श्लोकों में, निश्चय सुनो मैं तत्व त्याग त्याग के विषय में मेरा मत सुनो, मेरा निश्चय क्यों मत सुनो, हमारे आप भी कह दो त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध, त्याग हे पुरुष व्याघ्र पुरुषेष्ठ, त्याग तीन तरह का होता है। तो एक श्लोक इसमें गया, तीन तरह का होता है। अब भगवान कहते हैं अपने त्याग का मत कर, यज्ञ दान तब न त्याज्यम वही ले लिया, वो तो मैं हमें ले हम स्वीकार, यज्ञ दान तो त्याग त्यागना नहीं चाहिए, अगर न करता तो करना चाहिए, इतना उसे सुधार करो। पर न त्याज्यम था भगवान के न त्याज्यम कार्य में होता जरूर करना चाहिए, यज्ञ दान तब छोड़ना नहीं जरूर करना चाहिए। ये विवाह पावना नहीं मनीष नाम, मनीषी जो मन के ऊपर अपना मन से ईशा मनीषा, मन के ऊपर अधिकार रखने वाले मनुष्यों को ये पवित्र करने वाले यज्ञ दान तप है, निष्काम भाव से काम कर तो पवित्र करते हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं सुनो मेरी बात और सुनो, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, और एकांत अपित कर्माणी, ये वेदांत तप ये करना, इसके सिवाय तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, वो में जो शुभ कर्म जीते हैं अपितु सर्वाणी कर्माणी कर्तव्यानी, एकांत अपितु सर्वाणी संगम चेतवा, संग और फल का त्याग, हुआ फल का त्याग भी था भगवान की आशिक त्याग और कर देना, और जितने शुभ कर्म वो करना है कर्तव्यानी ने पास निश्चित मतमोत्तम निश्चय सुनो निश्चित मतमोत्त, तीन श्लोकों में अपना निश्चय बता दिया, ठीक है ना, निश्चय सुनो और निश्चित मतमोत्तम। अब कहते हैं कि वो तीन प्रकार का त्याग है, अब तीन प्रकार का त्याग बताते हैं, नीत संन्यास कर्मण हो पाते, नीत जो कर्म है जिसके लिए विधान कर दिया कि ब्राह्मण को ये करना है, क्षत्रिय को ये करना है, वेश को ये करना है, शूद्र को ये करना है, स्त्रियों को ये करना है, पुरुषों को ये करना है, साधुओं को ये करना है, गृहस्थों को ये करना है, ऐसे नियत कर्म विधान कर दिया कि इन्हें को ये करना चाहिए, नियत शुद्ध संन्यास है, नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, वो तो करना चाहिए, मुहात परित्याग मूर्ता से छोड़ दे, क्या बड़ा फालतू है, ऐसे मूर्ता पूर्व त्याग किया जाए वो है तामस त्याग, अधोगत तामसा, और दुख में तेल यद कर्म, ये अपना अपना कर्म, स्त्रियों का कर्म, स्त्रियों का कर्म आज झंझटे कितने, पुरुष गर्द कृष्ण कर्म झंझटे कितने, ऐसी झंझट अपनी अपनी होगी, सेवा करो, ये करो, राज्य की रक्षा करो, झंझट है, तो ये झंझट है काया का क्लेश हुआ, छोड़ दो अपने मौत से सुचरे, मौत से आराम करेंगे, दुख में तेव या तो मैं काया क्लेश हुआ, काया का क्लेश होता है, दुख होता है, ऐसा विचार कर और त्याग करते, वो राज त्याग होता है, त्याग का फल नहीं मिलता उनको, त्याग शांति निरंतरम, अब आदर्श परमात्मा त्याग तो तामस हो जाएगा, स्वार्थ और शरीर के आराम के लिए त्याग तो राजस हो जाएगा, त्याग का फल नहीं मिलेगा। अब कहते हैं सात्विक त्याग, तामस त्याग, राजस त्याग, अब सात्विक त्याग, कार्य में त्यागत कर्म नियतम, शास्त्र विहित कर्म है और कर्तव्य चाहिए, हमारे करना जरूरी है, ऐसे कर्म जो कर्म किया जाए संगम चेतवार फल से फल और राशि का त्याग कर किया जाए, सत्याग सात्विक वो माता वो सात्विक त्याग है, तामस हो गया, राजस हो गया, सात्विक हो गया, कार्य में जीवित कर्म कर्तव्य हमारा, गृहस्थ हो तो गृहस्थ का कर्तव्य है, कोई घर पर आ जाए अतिथि सत्कार करना, गृहस्थ का खास काम है ये, क्यों ब्रह्मचारी संग्रह करते नहीं, वानप्रस्थ जन्म रहते बेचारे सन्यासी पास हो जय राम जी की, तो गृहस्थ को अतिथि सत्कार करना कोई आ जाए तो, ब्रह्मचारी के लिए गुरु सेवा, गृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार, वानप्रस्थ के लिए तपस्या, सन्यासी के लिए ब्रह्म चिंतन, ये खास एक एक कर्म है, ये करना चाहिए। अब एक बात इसमें और बताऊंगा, इस बात से ये अलग कर दिया, कार्य में तीव्रत नियतम के दुना, यही बात वहां है, वहां एकान्य कर्माणि संगम चर्चा फलां से कर्तव्य नीति मेरे पास है निश्चय मतमोत्तम मिलेगा, तो ये निश्चय किया मेरा मत है, ये सात्विक मत है। अब कहते हैं त्यागी का वर्णन किया, तीन श्लोकों में त्यागी का वर्णन है, त्याग करने वाले भक्ति का वर्णन है, न द्वेष ही अकुशल कर्म, अकुशल कर्म है उसे द्वेष नहीं करता, और कुशल कुशल के साथ आसक्ति नहीं करता, सत्व भी समावेश है, मेधा भी है, संदेह रह गया है, वो त्यागी है, इसलिए सब त्यागी है। तो अकुशल का अकुशल कर्म जो ठीक नहीं है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, वे अकुशल कर्म है, तो उसका त्याग करता पर द्वेष पूर्वक नहीं, और कुशल जो साक्षात भगवान की प्राप्ति के कर्म है, शुभ कर्म है, वर्णाश्रम अनुसार है, वो करना, पर राग पूर्वक नहीं, त्याग द्वेष पूर्वक न हो और ग्रहण राग पूर्वक न हो, वो त्याग सत्य संवेदावी संसार है, ये त्याग एक नहीं देह बता सके, क्यों तक तुम कर्माणि अशेषता, तो कोई भी देहधारी सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं करता, नहीं क्षण जात कर्म के अग्रण कष्ट भी कश्यांश अवस्थायाम अभी और कष्ट भी क्षण भी अग्रमित न तिष्ट थी। तो त्याग कहते हुआ नहीं देह प्रचार देहधारी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। तो ये तो कर्म फल त्यागी सत त्याग कर्म फल का त्याग कर देता आशी त्याग कर देता उसे वो त्यागी कहते हैं कर्म छोड़ना नहीं। हम साधु बन जाते हम छोड़ो झंझट गृहस्था में बड़ी झंझट रहती है एकांत साधु रहे भजन करेंगे और सोए आराम से आराम से रहेंगे मुफ्त में रोटी मिलेगी मुफ्त में कपड़ा मिलेगा मुफ्त में जगह मिलेगी मुफ्त में किराए मिलेगी मुफ्त में पोथी मिलेगी मोल से रहेंगे आराम से त्याग का फल तो मिलेगा नहीं भाई कमजोर है। तो यस्तु कर्म फल कर्म का त्याग नहीं करना नहीं देह प्रशासन कर्म छोड़ने दूसरा कर्म करेगा शुभ नहीं करता अशुभ करेगा नहीं तो ताश तो बड़ी खेलेगा अब लाइन मचेगा नहीं तो नींद ही रहेगा नहीं तो आलस में ही रहेगा कुछ कुछ करेगा किए बिना रहेगा तो फिर शास्त्र भी इसी करो ये बताया जा तीन तरह का त्यागी। अब फिर त्यागी का एक और है कितने में कितना फल श्लोक है मैंने तीन दो हो गया बारवा अनिष्टम इष्टम मिश्रण चतुर्विधं कर्मणा फलम अनिष्ट नहीं चाहते वो फल इष्ट चाहते वो फल और मिश्रित कुछ चाहते कुछ नहीं चाहते ऐसा ये तीन तरह की परिस्थिति आती है अनुकूल आ जाती है कभी प्रतिकूल आ जाती है कभी कुछ अनुकूल प्रतिकूल मिली मिली आती है। तो ऐसे तीन प्रकार कर्मों का फल है अत्यागी नाम बहुत ही नहीं त्याग करते न तो सन्यासी नाम को सन्यासियों कहीं नहीं होती ऐसी इसमें कर्मों का विवरण अच्छा किया अपने साधक संजीवनी में अनिश्चित मिश्रित कर्म कैसे कैसे होते हैं क्या क्या किए जाते हैं ये देख रहा हो तो वहां विस्तार तू देख लेना। बारवां श्लोक अब कर्मों में पांच हेतु उनके बारे में तीन श्लोकों में काम के करने में पांच हेतु होते हैं ये तीन श्लोकों पर पंचहिता ने महाभाव कारणानि बोध में सांख्य कृतांति प्रवक्ता निश्चित सर्व कर्म संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत से तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि बारे तो कर्मयोग के विषय में कहा है अब मैं सांख्य के विषय में कहता हूं तेरा से भगवान ने सांख्य के विषय में कहना शुरू किया निस्सिंग सुमेता तथा त्यागी त्याग का संन्यास रूप से त्याग में तो कह दिया है अब सांख्य के विषय में कहता हूं सुनो सांख्य सिद्धांत सांख्य कृतांत सिद्धांत है उनमें पांच कर्म के हेतु होते हैं अधिष्ठान तथा कर्ता करण से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवम से मात्र पंचम शरीर वांग मनो भी यद कर्म प्रारंभ से शरीर से करो वाणी से करो मन से करो पंच न्याय विपरीत हुआ चाहे सास भेद हो चाहे निषिद्ध हो पंचेत हेतु से हेतु ये पांच हेतु होते हैं सब ये पांच हेतुओं को बनेंगे तीन श्लोकों में अधिष्ठान शरीर कर्ता जो करने वाला अभिमान करने वो मैं करता हूँ ऐसा कर्म जो है पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पृथक विधम अंतकरण मन बुद्धि अहंकार ये कर्म और विविधा से पृथक चेष्टा हलचल क्यों करना बोल लाना बोल देना करने की क्रिया और देव मन संस्कार भीतर जो संस्कार होते हैं ना उनके अनुसार कर्म करता संस्कार ये जो है ये पांच कर्म होने में। अब ऐसा होता हुआ जो कर्मों का करता केवल आत्मा को मानता है कि आत्मा करता कर्म करने वाला है आत्मा ही भोगने वाला है। अब कर्तृत्व अभिमान का निषेध करने के तीन श्लोक है शरीर तत्व सती करता हम आत्मा में ऐसे ऐसा होने पर एवं सती है तो ऐसा पांच हेतु है उसमें शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है अकृत बुद्धित्व उसकी बुद्धि ठीक नहीं है दुर्मति है वो ठीक नहीं जानता है जैसे न अंकृत भाव और जिसके अंकृत भाव नहीं है बुद्धि में लेप नहीं है संपूर्ण लोगों को एक साथ मार दे तो न मारता है न बंधता है करते तो अभिमान रह होने से ये महिमा नहीं तो करते फंस जाता है ज्ञान अब ये तो आएगी तीन सौ अब ज्ञान ये होगी प्रतिज्ञा ज्ञान कर्म और कर्ता तीन तरह कहूंगा, फिर बुद्धि भी तीन कर्म कहूंगा।
तीन प्रकार के कर्म प्रेरणा, तीन प्रकार के कर्म
संग्रह,
ये
यहाँ
क्यों है?
ये हो रहे बीच में, ये ख्याल नहीं किया। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिपदा कर्म लोचना, ये ज्ञान ज्ञेय ये कर्म की प्रेरक है। पांच तो हेतु है कर्म होने के, और उसका ज्ञान होगा तब करना। कोई काम करेगा तो उसका ज्ञान होगा तब करेगा ना, और ज्ञेय होगा किस उद्देश्य से करेगा, और कौन करेगा तो किस भाव से करेगा, प्रेरणा किस कारण से करता है। तो ये तीन तरह की होती, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, ये तीन प्रकार की तो कर्मों की प्रेरणा है। ज्ञान कर्म से करता जाते थे वो, और कर्ण कर्म करते कर्म संग्रह, कर्ण कर्म और कर्ता ये तीन तरह कर्म संग्रह होगा, संचित कर्म होगा। वो कर्म करेंगे सुख दुख सुख फल देने वाले वो संग्रह होगा। तो आत्मा कर्ता नहीं है, कर्ता मानता है गलती है, और कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह ये है, ये कर्मों का विषय होगा। अब अगर ये मैं कैसे था ना भूल गया 19वां श्लोक, ज्ञान कर्म से करता था। अब इसमें ज्ञान आया, कर्म आया, ज्ञान के प्रेरित आया, कर्ण कर्म करता आया, तो ये तीन तरह के होते हैं। ज्ञान तीन तरह का, कर्म तीन तरह का, कर्ता तीन तरह गुण व्यक्त प्रोचित गुण संज्ञान है, ये सांख्य शास्त्र में कहा है। ये सब स्थान उनको भी तुम सुन लो, बताऊंगा मैं। सर्वभूतेषु ये नैकं भावनं प्रतिबिम्बितं संपूर्ण भूतमेक विनाशी परमात्मा है। अविभक्तम विभक्तेषु, प्राणी सब विभक्ति से इसमें अविभक्त रूप से परमात्मा सबसे है, ये ज्ञान है सात्विक। कैसे गुणातीत ज्ञान तो गुणातीत होता है, सात्विक कैसे है कि मनुष्यों में देखा, प्राणियों में देखा, संसार की सत्ता को लेकर सब में देखता है, तो ये सात्विक होता है। अविभक्तम विभक्तेषु, ये विभक्त भी होता है अलग अलग अलग, इसमें अविभक्त भाग रहित परमात्मा है। मिट्टी के बने हुए तरह तरह के, कोई हंडी है, कोई कम चढ़ने है, कोई सकोरा है, कोई दीवाठी है, कोई ढकना है, मिट्टी एक है सब में। ऐसे ये संसार में एक परमात्मा है, एक ज्यादा दिखता है बढ़ रहा आश्रम ज्यादा, ये सात्विक ज्ञान होता है। पृथ्वी एक नाम है, सर ये न्यारे है, ये हम न्यारे है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अलग अलग है, सर सही अलग अलग है हमारा, संपूर्ण भूत हम अलग अलग हम तो है, ऐसा अलग अलग देखना ये राजस्व ज्ञान है। तू कृष्ण वध कृष्ण एक शरीर में जो कुछ यही मैं हूँ, कृष्ण वध संपूर्ण की तरह एक उसमें एक कार्य सकता हूँ, पैदा हुआ उसमें आसक्त है, अथत्वार्थवत तत्व तत्व ज्ञान नहीं है, ऐसा जो शरीर में मैं हूँ मेरा हूँ, ये ज्ञान है तामस, ये तामस ज्ञान है, अधोगति तामस। इस बार भागवत में आया है ना, मलेशिया में पशु बुद्धि में सही, पशु बुद्धि में मान जही, ये पशु बुद्धि है, तामस ज्ञान है। भगवान ने कहा सुखदेव जी को कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मर जाऊंगा तू कैसे मर जाएगा, इस पशु बुद्धि को छोड़, ये तामस ज्ञान। अब सा कर्म तीन तरह का, ज्ञान कर्म च कर्ता च, ज्ञान तीन तरह का बताया, अब कर्म तीन तरह का बताते हैं। नियतम श्वास नियत हो और संग रहितम करते तो अभिमान, यहाँ संग करते तो अभिमान का है, करते तो अभिमान होना हो, अराग द्वेष हो राग द्वेष के बिना, संग रहितम करते क्यों लिया, अराग द्वेष आगे पड़ा, राग द्वेष राग संग रहितम राग रहित तो एक हुआ, इस बात करते हुए भाग रहित। सांख्य शास्त्र में, सांख्य सिद्धांत में, सांख्य मार्ग में अहंकार का त्याग है, और योग मार्ग में कामना का त्याग है। ये सांख्य का वर्णन 40 तक, 13 से 40 तक प्रकरण है, सांख्य की दृष्टि से 12 तक था, कर्मयोग की दृष्टि से और सांख्य योग की दृष्टि से। इस बार संग रहता हूँ अराग द्वेष तय करता हूँ, वहां संगम तय हुआ फलम से ही वह है, कर्मयोग में त्याग करे, अरे संग है ही नहीं, फल है ही नहीं, फल ऐसा है ही नहीं, अहंकार भी नहीं है, करती थी नहीं, तब इसे रहित बताया, वहां त्याग बताया, कर्मयोग में फल का आसक्ति का त्याग बताया। यहाँ नियतम संग रहितम अराग व्यस्तम अफल प्रेम सुना कर्म यह तक सात्विक बोलते थे, योग सात्विक कर्म था सांख्य योग का। ये तो कामयोग सुना कर कामयोग अमुक फल मिलेगा उस धन के लिए करे उसके लिए ये करे कामयोग सुना कर्म, और साहंकार अहंकार भरा यक्ष मोदी से इस मध्य में अहंकार से बोला से परिश्रम उसमें ज्यादा होता है, जितना ही राजसी तामसी वृत्ति होगी उतना ही परिश्रम अधिक होगा, और जितनी सात्विकता होगी उतना ही परिश्रम नहीं होगा, स्वच्छता सारे। तो ये राजसम अनुबंधम से इसका फल क्या होगा, क्षय कितना होगा, हिंसा कितनी हो जाएगी, हमारा पौरुष है कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं, मोहाधार वृत्ति मूर्ता से आरम्भ कर दिया, किन सारी होती है कूद जाती है, कहाँ पड़ेंगे ठीक होगा पता ही नहीं, कूद गया ऐसे काम आरम्भ कर दिया। अब अरे तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फल क्या होगा, नतीजा क्या होगा, अरे करना क्या है, हाँ कर दो, ऐसे मूर्ता से किया जाए मोहाधार वृत्ति जो तामस होता है, ये तीन प्रकार कर्म सात्विक राजसिक तामस। अब करने वाला कर्ता तीन तरह का होता है, अब कर्ता के तीन विधि तो क्रम वही सात्विक राजसिक तामस, एक जगह आया तामस राज सात्विक और सत्विक चलता है। मुक्त संग अनंबादी मुक्त संग आसक्ति रहित है, ये तो सात्विक है ना, और सांख्य योग की दृष्टि से मुक्त संग हो अनंबादी हम वदनशील रहे हैं, धृति उत्साह सहित है और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, ये कर्ता सात्विक है। यह 26वां श्लोक है, अथवा दिन 26वां दो छह होते हैं, दो दो बातें छह बातें हैं, इसमें मुक्त संग हो अनंबाद दो का त्याग और धृति उत्साह दो के सहित और दो में रहित सिद्धि असिद्धि सम, ये छह बातें होंगी, दो दो होंगे रागी कर्म पूर्व राग आसक्ति है पदार्थों में भोगों में प्रक्रियाओं में, रागी कर्म फल प्रेम से कर्म का फल चाहता है, ये मेरा मतलब अहिंसात्मा के दूसरों नाश भी लेते थे और अशुद्ध अंत करने वाला है, हर शोक कभी हर्ष कभी शोक कभी सुखी कभी दुखी, ये हो गया अभी हो गया अब क्या करेंगे अब करेंगे, कभी बहुत हो गई धन मिल गया, अरे भाई से घाटा लग गया, हर शोक करता राजस वो राजस करता है, रजोग नहीं करता है, राजस बनने अयुक्त है प्राकृत अयुक्त योगी ने निष्काम भाव नहीं है, प्राकृत जैसा माँ के जन्मा वैसा ही बचा है, कोई शिक्षा ही नहीं, स्तब्ध कठोर किसी भी समझ स्तब्ध मिलना नमता ही नहीं, स्तब्ध खेड़ी होती वृक्ष वृक्ष होता है एक वृक्ष बंदर लड़ जाता है, खेड़े में कृषि होती है काली काली कृषि होती है, वो लड़नी टूट जाएगी लंबी होगा, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध षठ मूर सपा लंडराज निष्कृति का निष्कृति नहीं, किसी उपकार किया है तो उसका उपकार प्रत्युपकार नहीं करता, निष्कृत अलस है आलसी विषाद और विषाद होता है, और काम करने में लगा तो थोड़े काम में बड़ा समय लगा देता लंबा थोड़ी करता रहता है, काम जल्दी पूरा होता नहीं, आदमी करता तामस ये तामस करता होता है, किसी काम में नहीं तामस अब विषादी करो बुद्धे वेतन धृते नहीं हुआ। अब ये प्रतिज्ञा का 19 आया था एक ऐसे एक श्लोक ये है बुद्धेर भेदम धृते से वहाँ तीन है या दो है आगे एक है, ये तीनों फर्क है, वहाँ तीन है या दो है, कर्ता तीनों का है, यहाँ बुद्धि भेद दो का है, वहाँ सुख एक है, ये तीन प्रतिज्ञा वाले श्लोक है, तीन है दो है एक। तो ये तीन तरह के गुण तस्ती विधि सुनो प्रोचुर मानव अशेष है, मैं साफ साफ कहूंगा पृथक तो इन्हें अलग अलग बताऊंगा सात्विक राजस्य तो सुन मेरे से भगवान आज्ञा दे अब बताओ महाराज कि प्रवृत्तियों से निवृत्तियों से कार्यकारी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए किसमें हटना चाहिए, ये बात जानता है और कर्तव्य फिर अकर्तव्य भी जानता है और भय और अभय को जानता है, बंद और मोक्ष को जानता है, वो बुद्धि सात्विक है। सात्विक बुद्धि में ये विवेक होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति कार्यकारी भय भय मोक्ष मोक्ष। यह धर्म अधर्म कार्य धर्म और अधर्म कार्य अकार्य अयथत ठीक ठीक नहीं जानता, ठीक पता नहीं लगता, ये राजसी बुद्धि है, बुद्धि राजसी है।
कार्य कार्य को ठीक जानता है या ठीक नहीं जानता,
ये भी साथ ठीक जानते हैं राजसी बुद्धि से नहीं सोचे क्या करते भी है क्या किसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए किसे निवृत्ति होनी चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, कैसे बोलना चाहिए कैसे चलना चाहिए कैसा काम करना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करे कैसा नहीं करे, जानते अंदाजा नहीं हो रहा था राग को लेकर, ये बात है। और अधर्म अधर्म को ही धर्म मान लिया, बस ये वर्ण धर्म उठाना है आश्रम धर्म उठाना है, ये धर्म का साथ नाश कर देना है, ईश्वर या तो खता ही उठा देना है। अधर्म धर्म जी मन से तम सब तुमोगुण से आवृत हुए है, वो उल्टा चलते है, वो तो संदेह रहता है राजसी होता है, इसमें उल्टा होता है। सर्वाधान विपरीत स्थान संपूर्ण को विपरीत विपरीत जो कहे उनसे विपरीत आतियों से अपनी होना चाहिए, वो एक करे थे उसको उल्टा कर रहा पास करे तो उसको या बस परिचय जाइए अधर्म धर्म मंदिर से तमसा वाला सर्वाधान विपरीतता से बुद्धि सा पास तामसी। अब बुद्धि बुद्ध और वेद धृति से ही अब धृति के वेद सुनो धारे मन प्राण इंद्रिय क्रिया मन और प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करके ठीक यथा योग उनको ठीक लगावे धृति के साथ में, मन की क्रिया मन का संचलन है वो ठीक लगावे, बुद्धि की क्रिया अंदर की क्रिया भीतर में शरीर की क्रिया होगा धृत्या या धारे मन प्राण इंद्रिय क्रिया प्राण की मन की इंद्रियों की क्रियाओं को ठीक धारण किया जाए योग निष्काम भाव से अभिविचार न्याय व्यविचार दोष जिसमें नहीं है ठीक शास्त्र की मर्यादा अनुसार ऐसी धृति होती है वो सात्विक ही हुई है। और जिस धृति से मन धारण करता है प्रसंग है न पराक्रम से धारण तो करता है आशक्ति कारण फल की इच्छा रख देता है वो राजसी हो जाती है राग राग राधा कर लेती है। जिस धृति में स्वप्न भय शोक विषाद मत इसको छोड़ती नहीं ऐसी बुद्धि रहती है कभी नींद आती है कभी भय होता है कभी शोक होता है कभी विषाद होता है कभी घमंड आता है नैमिषारण दुर्मेधा ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले को नहीं छोड़ता वो अधिति तामसी इन धारण करने की बात नहीं गई सात्विक राजस धारण करे ये छोड़े ही मुझे आज नहीं पड़ा है कभी नींद जल है का दुख ही ज्यादा है क्या विषाद कर रहा है संताप कर रहा है चिंता कर रहा है ऐसी स्थिति है वो तामसी स्थिति है ये बुद्धि स्थिति का भेद हो गया अब एक सुख हो रहा गया सुकुंतान जिस सुख के लिए आदमी काम करता है वो सुख भी तीन तरह का है ये सुख की प्रतिज्ञा वाला सुख सुकुंतान त्रिदुम सुनवे भाषा सुख इसमें एक बात है और कि आधे श्लोक में प्रतिज्ञा है डेढ़ श्लोक में सात्विक सुख का वर्ण है इतना फर्क अभ्यास आधारण से जिस अभ्यास से जिस सुख में अभ्यास में नहीं भजन ध्यान करने से जो रमण होता है कीर्तन सब करने से जो शांति मिलती है सुख मिलती है वो सात्विक सुख है अभ्यास आधारण और आरंभ में विष की तरह दिखता है मन नहीं लगता है परिणाम में अमृत की तरह होता है ये सात्विक आत्मबुद्धि परमात्म विषय बुद्धि से प्रसन्नता से परमात्म विषय बुद्धि लग जाए उसे प्रसन्नता होती है परमात्मा को लेकर नाम जप करता है कीर्तन करता है भजन करता है ध्यान करता है पुस्तक पढ़ता है राम गाता है उसमें भगवान को लेकर सामने ये क्या हुआ था सात्विक सात्विक सुख हुआ ऐसा सुख सात्विक होता है। और विषेन्द्रिय संबंध से सुख होता है, शब्द स्वस्वरूप रसगंध इनका मान बढ़ाई का जो बढ़ाई का राजी हो जाए, भोग में राजी हो गया, रुपया मिल गया राजी हो गया, विषेन्द्रिय संयोग ये तो अगले अमृत हो देखो तो अमृत के रहे परिणाम जहर की तरह निकलेगा। सुख है भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है, अंत में परिणाम विष की तरह होगा। ये क्या होगा? राजसी सुख होगा, तत्सुम राजसम प्रभुत्व, तत्सुम राजसम प्रथम। और जगत रे चाहन बंदे से आज मैं पड़ा है, बैठा है, काम करता नहीं, पैसे करने में बैठा है, बार थोड़ी बात कर लो, थोड़ी ताश खेल लो, थोड़ा तमाश हो दिया, हंसी दिल्ली कर दी, पानी उछाल दिया, निरस हो जिसे कोई ध्यान मिलता है, न भगवान मिलते न कोई स्वास्थ्य शुद्ध होता। ये तक रे चाहन बंदे से आर्म में और फल में मोहन महात्मा ने मोहन मूड पूर्ण मूर्ता पूर्ण करता है, निद्रा से प्रमाद से उत्पन्न हुआ, निद्रा से आलस से और प्रमाद से न करने वाला काम करने से, प्रमाद दो तरह का बताया था, अक्रिय सक्रिय, इनसे पैदा हुआ सुख है उत्ताम से सुख। ये हो गया सब, 13 विषय हो गया, 3-3 श्लोकों का। अब कहते हैं न तो दृष्टि पृथ्वी हुआ, पृथ्वी पर दिव्य स्वर्ग में देवताओं में इन सत्वम प्रकृतिम कोई प्राणी ऐसा नहीं जो इन तीनों से मुक्त हो, त्रिवीर गुण ही मुक्तम से आप तीनों गुणों से रहित तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, सब तीनों गुणों से सम्मित है। ये उपसंहार कर दिया तो 1 से 12 तक त्याग का वर्णन है, 13 से 40 तक सांख्य की दृष्टि से वर्णन है। ये हुआ सा 40 तक। अगर चला ये 40 तक हो गया साहब, अब ये जो बता नियत हूँ संग्रहित हूँ नियत संन्यास क्रमण कार्य में नियत हूँ क्रियते अर्जुन, वो नियत क्या है? वो नियत कर्म ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य शूद्र का नियत कर्म वो क्या मैंने कहते ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम से परम तब ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का और शूद्रों का ये एक बद दिया तीनों को जो तीन इस बार तीनों को साथ में दे दिया शूद्राणाम से परम तब कर्माणी प्रवृत्ति स्वभाव प्रवेगुणी स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा इनकी विभक्ति अलग अलग कर्म किए वो नियत कर्म है। हाँ वो विजाति है, ये विजाति नहीं है, जने होता है नहीं होता है वो भेद कर दिए कर्मानी प्रभुता स्वभाव प्रभेद गुणी स्वभाव से उत्पन्न वाले गुणों सत्व रजतम सतोगुण की प्रधानता रजोगुण की प्रधानता आ जाएगी उसमें रजोगुण की प्रधानता सतोगुण साथ में रहेगा क्षत्रिय हो गया रजोगुण की प्रधानता साथ में तमोगुण तो वैश्य हो गया तमोगुण की प्रधानता होगा शूद्र हो गया स्वभाव प्रभेद गुणी चातुर बनने को सोचा थे हम चातुर बनने में गुण कर्म विभाग से वो कर्म गुण पर विभाग और कर्म विभाग ऐसे किया जाए समूह तमाश तपस होते हो ब्राह्मण के कर्म बताते हैं मन का एकाग्र करना विद्यों का एकाग्र करना तपस्या अपने वर्ण धर्म के पालन करते हुए जो कष्ट है प्रसन्नतापूर्ण सहना शरीर बुद्धि की शरणी स्तुति रखना क्षमा कर देना नम्रता रखना सरलता ज्ञान शास्त्रीय और विज्ञान का अनुभव आस्तिक ज्ञान तो शास्त्र से विज्ञान न कैसे काम करना यज्ञ कैसे करना किस तरह से यज्ञ पर वो विज्ञान विशेष ज्ञान और आस्तिक परमात्मा है सर ये ब्राह्मण का कर्म स्वभाव ये स्वभाव जैव सहज है स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण सूरवीरता तेज धीर दक्षिण निर्देशा प्रायण सूरवीरता तेज प्रकार प्रभाव जिसका पड़ता है धृति रखना है और दाक्षिण चतुराई सब प्रजा का ठीक संचालन करना अच्छे अपने वर्ण धर्म बराबर आश्रम पर सिंह नियुक्त करना सबको नहीं मिलता आजकल सब मिले सब्जी मिलेगा ही नहीं ब्राह्मणों में तितिक्षा है, जल्दी स्नान कर लेना है, अपने संध्या करना है आदि ज्यादा मिलेगा क्षत्रियो वैश्यों की अपेक्षा। बस इतनी बात है, उनमें संख्या में ज्यादा मिल जाएगा। परंतु आजकल तो जरा मेरी हुई है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब ठीक तरह से अपनी मर्यादा पर नहीं है। ऐसे साधुओं के धर्म, ऐसे गृहस्थों के धर्म, ऐसे बहनों माताओं के धर्म, ऐसे भाइयों के धर्म, अपने अपने धर्म के ऊपर कायम नहीं है। ये छोड़ते जो धीरे दानम ईश्वर भाव से दान और ईश्वर भाव शासन कर रहा हो ऐसे करो ऐसे करो। ये क्या है? ये शासन धर्म स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव कर दे स्वभाव। ऐसे तीन कृषि गोल सुबारी ये तीन बेसिक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना सूर्य का धर्म है। ये चार श्लोकों में तीनों वर्णों के धर्मों का वर्णन किया। ये चार श्लोक समो दम तप शोच शांति आद्य में से ज्ञानम विज्ञानम आस्ति नौ धर्म बताए। ब्राह्मण के नौ बताए, क्षत्रिय के सात बताए, वैश्य के तीन बताए, शूद्र का एक बताए। नौ धर्म बताए जो कोटी एक पैदा नहीं। क्षत्रिय धर्म में युद्ध आदि करने विजय विजय पैदा नहीं जा और शूद्र का परिजन एक में माला मार। क्षत्रिय के धर्म तो नौ पालन कर रहे पोटी कोटी एक पैदा नहीं और ये क्षत्रिय सात धर्मों का पालन करे पर उसमें युद्ध में भागना नहीं, दाक्षिण चतुराई से तेज से सौर्य से कुछ मिल जाए और बड़ा वैश्य के तो तीनों ही खजाना है। कृषि खेती गोरु पैदा कितनी पैदा होती खेती गोरु से गोरु से पैदा मानी जी व्यापार गोरु से पैदा पैदा ही पैदा का धन खजाना वैश्यों को दिया। परिचय में शूद्र सेवा करे सेवा से मिले सभी सबका काम कर दे चारों वर्णों की सेवा करे उनसे मिले वो शूद्र का धर्म है। शूद्र सेवा भी स्वभाव ये स्वाभाविक कर्म है सब। चार वर्णों का चार श्लोकों में धर्म वर्ण क्या स्वाभाविक। अब बताते कि स्वाभाविक कर्म है तो पहले नियत कर्म बताए, नियत कर्म बता दिया। स्वे स्वे कर्मणी अभिनेता अपना अपना कर्तव्य कर्म उसमें है ठीक है तो संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। समझे यह आधे एक श्लोक प्रतिज्ञा करती स्वकर्त निर्देश यथा बंदी अपने कर्म में लगा हुआ सिद्धि को कैसे प्राप्त हो वो सुनो कैसे होगा कहता प्रवृति भूतानाम ये सर्वमिदंततम जिससे संसार व्याप्त है जिससे सब संसार पैदा हुआ स्वकर्मा देश ब्राह्मण अपने कर्म द्वारा भगवान को पूजन करे सब में क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा सब में परिपूर्ण भगवान को पूजन करे वैश्य किसी गोलू से जा रहा सब में भगवान बने उनका पूजन करे शूद सबके पूजन करता और सबकी पूजन करे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। तो सूर्य के दोनों बात होगी परिचर्य सूर्य का कर्म भी सेवा का सेवा ही भाव डबल सेवा होगी। और उन्होंने कहा तुम्हारा कई कसन पाना अपने सेवा भाव से करे ब्राह्मण अपने धर्म सेवा भाव से करे क्षत्रिय अपने भाव का सेवा भाव से करे और सूर्य अपने सेवा भाव से करे और सूर्य अपने सेवा भाव से करे सिद्ध निधि मान श्रीराम स्वधर्मो भी गुणा पर धर्म समस्त पर धर्मानुष्ठान किया जाए बढ़िया पर स्वभाव नियत कर्म निगुण है और दूसरा धर्म अच्छा है इसी तरह विस्तार से है व्याकरण। अपना धर्म विगुण भी हो कुछ कमी भी है जैसे ब्राह्मण के धर्म जितने शुद्ध है ना इतने क्षत्रिय नहीं है क्षत्रिय के जितने शुद्ध है इतने वैश्य नहीं है वैश्य जितने शुद्ध है इतने शुद्ध नहीं है दोष आता है। श्रेयान स्वधर्म अपना धर्म है अच्छी तरह से अनुष्ठान किए पर धर्म से अपना धर्म कल्याण कर रहा है। स्वधर्म में कष्ट आ जाए तो स्वधर्म पालन कर मर जाए तो ही कल्याण है और पर धर्म करे जीवे तो ही भयावह भय देने वाला है पर धर्म भयावह ये बात है। जानवानो साधु काम ठीक है, मुफ्त रोटी मिले अपने साधु बन जाऊंगा। और ये पर धर्म भयाव है भाई, परधर्म भयाव स्वभाव नीत कर्म जो करते हो पाप को नहीं प्राप्त होगा। स्वभाव नीत कर्म है किसी को हिंसा होती है ना, हिंसा की निगे रखते रखते व्यापार आदि में हिंसा हो जाती है। खूब ख्याल रखते हुए तो वो माफी जैसा कुछ व्यापार में चीज लावे उठावे पटके ले गए, कई कीड़े मरे कई जानवर मरे, कीड़ों को तकलीफ होती, व्यापार कर दी तीन दुकान है चौथी दुकान हमने कर दी तो उनके ग्राहक हमारे आ जाएंगे तो उनको तकलीफ होगी। ऐसा तो सर्वारंभा ही दोष है ना, तुम्हें सबके सब आरम्भ दोष युक्त है, कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। भिक्षा के लिए जाना तो जिसे भिक्षा उकड़ा है, अभी दो हो गए तो ग्रस्त के बाहर हो गया, इस बात भिक्षा तो कोई है तो बाहर नहीं जाना, कोई भिक्षा मांग तो दूसरी तरफ जाना, कोई आरंभ करो कुछ न कुछ दोष आ ही जाए, सर्वारंभा ही दोष है ना, धूमे नाग दुआ प्रसाद ये बात है जी।
बाकी प्रकरण दूसरा आ जाएगा,
हाँ तो इतने चलो। अब आगे ज्ञान का प्रकरण आ गया, मैंने 59 से 55 तक ज्ञान का वर्णन है, जिसमें ध्यान योग पर उपासना से ध्यान योग वर्णन है। 56 से 67 तक बड़ा मीठा प्रकरण है, बहुत ही मीठा 11 श्लोकों का, फिर उनकी महिमा ये हुआ था। तो अपना अपना कर्तव्य का पालन करना बड़े उत्साह से, बड़ी शूरवीरता से, अच्छी तरह से संस्कृति लगते रहना। गीता क्या है, एक ज्ञान का समुद्र है, अथाह समुद्र, विलक्षण समुद्र, सबका कल्याण करने वाला, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो भोला हो रहा है, पापी हो दुरात्मा हो दुष्ट हो पापी होने वाले हो, पशु पक्षी आदि भी अगर लग जाए तो उनका भी कल्याण, पापी से पापी भी भगवान संस होता है, मूर्ख से मूर्ख भगवान संस होता है, सबके लिए छुट्टी दी है भगवान ने अपनी धर्म की, ऐसी बात हुई है। ये 48 लोग हुए आज, नारायण 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 नारायण।